بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اللہ کی تلوار ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف ابو زید شبلی نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب ذوالجلال کی عطا کردہ صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بھی بے چار و لاچار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا، رومیوں کے پرخچے اڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن جب دوسرے دن رومیوں کی گھبراہٹ، پسپائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر امم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور بہینہ قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکے کے بالائی علاقے قدا کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے در پہ ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے، اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطن پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پر امن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں کریں گے اور یوں پر امن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کی افتاد تباہ کے خلاف تھا۔ لہذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمرو نے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام خندمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حضیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر امم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، نمبر 1، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے۔ نمبر 2، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے۔ نمبر 3، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 4، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آخرکار یہ شوکت اسلام سے مروب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زیتوا میں پرشکوا لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرت مسرت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آیا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم ڈھائے جا رہے تھے آج ہمارے قدموں میں سرنگوں جان بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزار ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری و بے بسی کے عالم میں شاب ابی طالب میں محصور کر کے हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी थी, आज वो हमसे रहमो करम की भीख मांग रहे हैं। इस नारंगी दौरा को देखकर रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नम दीदा हालात में परवरदिगार आलम के हुजूर शुक्राने के तौर पर सजदा रेज हो गए। फतह मक्का को अभी 5 रोज ही गुजरे थे कि शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद की क्यादत में 30 मुजाहिदीन का काफिला मकाम नखला की जानिब रवाना किया, ताकि वहां मुशरिकीन ने अरब के मलजा व मावा उज्जा नामी बुत के परखचे उड़ा दिए जाए और इस तरह शिर्क के एक अहम और मरकजी मकाम का किला कमा किया जा सके। उज्जा कुरैश मक्का का एक मशहूर और बड़ा बुत था, जिसकी पूजा बड़े अहतमाम से की जाती थी। किनाना और मुजिर जैसे निडर, बहादुर और जंगजू कबाइल इसकी बहुत ताजीम किया करते थे। जिस इबादत खाने में उज्जा नामी बुत को रखा गया था, उसका इंतजाम और इंसराम बनू हाशिम के जेर असर कबीले बनू शैबान के सुपुर्द था। शिर्क के इस गढ़ को पैवंद खाक करना कोई आसान काम न था, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान हो जज्बा तौहीद से सरशार होकर कुदाल हाथ में लिए उस जाबुत के परखचे उड़ाते हुए अपनी जबान से बा आवाज़े बुलंद कह रहे थे, उज्जा मैं तुझे झुटलाता हूँ, तेरे अंदर तो जर्रा बराबर भी तकद्दुस नहीं। अल्लाह ताला ने आज तुझे मेरे हाथों जलील और रुसवा किया है, फिर इसे तोड़ फोड़ दिया और बाद में आग लगा दी। फतह मक्का के बाद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवाह के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में तबलीगी वफ्द रवाना किए, जिसमें जलील कदर सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। मशहूर हो चुका था कि पूरा कबीला मुसलमान हो गया है। जब कबीले के सरदारों ने देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद की क्यादत में कुछ लोग बस्ती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हाथों में हथियार पकड़े बस्ती से बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर हजरत खालिद बिन वलीद ने उनसे पूछा, क्या तुम अभी मुसलमान नहीं हुए हो? उन्होंने बयक जबान होकर कहा, हम सामी हैं। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनना था कि हजरत खालिद बिन वलीद रजील तालान को तैश आ गया, क्योंकि मुशरिकीन इस लफ्ज को बेदीनी के माने में इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग सालार काफला की माहिराना शमशीर जनी से मारे गए और कुछ खौफजदा होकर दुबक गए, जिन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। कैदियों को दूसरे रोज कत्ल करने का हुक्म दिया गया, तो बाज सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने तामील हुक्म से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि ये मुसलमान हो चुके हैं। महज गलत फहमी की बिना पर अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। इन्हें तहे तेग करना या इन पर हथियार उठाना किसी तरह भी जायज नहीं। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान का नुकता निगाह ये था कि अगरचे मुसलमान होते तो हमारे दरियाफ्त करने पर जरूर बरमला अपने मुसलमान होने का ऐलान करते, चूंकि इन्होंने अपने लिए इस्लाम के बजाय लफ्ज साबी को पसंद किया, जिससे साफ मालूम होता है कि इन्हें इस्लाम से नफरत है, लिहाजा ये लोग गर्दन जदनी के काबिल हैं। इमाम इब्ने तमीमा, अल्लामा आइनी और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाही अलैहिम का ये मौकिफ है कि बनु खुजैमा को दरियाफ्त करने पर बरमला कहना चाहिए था कि हम मुसलमान हैं। एक कामयाब जर्नल में बुनियादी तौर पर यह खूबी पाई जाती है कि वो फैसला कुन मरहले पर पहुंचने के लिए ज्यादा देर नहीं लगाता और ना ही सोच विचार में अपना वक्त जाया करता है, बल्कि फौरन दो टोक फैसला करने के बाद उसे नाफिजुल अमल करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजिल्ला ताला अन्हु ने जब उनकी जबान से लफ्ज साबी सुना, तो उन्होंने अपने तय ये फैसला कर लिया कि ये लोग इस्लाम को दिलो जान से नहीं चाहते। इन्होंने हमारे सामने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, जिसे हमारे दुश्मन बेदीनी के माने में इस्तेमाल करते हैं? बनू खुजैमा को इस गलत फहमी की बिना पर भारी जानी और माली नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वाकये की खबर रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपको दिली सदमा तो हुआ, लेकिन आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजील ताला अन्हु को कोई सरजनिश नहीं की, क्योंकि ऐसा सिर्फ गलत फहमी की बिना पर हुआ था। उनकी नीयत साफ थी, बनू खुजैमा के नुकसान का मदावा करने के लिए हैदर कर्रार सैयदना अली करमुल्ला वजह को कसीर मालो मता देकर उनकी तरफ रवाना किया, ताकि उन्हें खून बहा देकर राजी कर आए। तारीखी मनाजिर में अगर जायजा लिया जाए तो हजरत खालिद बिन वलीद रजील तालान को इस वाकये के बाद भी शाह अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद बदस्तूर हासिल रहा, क्योंकि इसके बाद बपा होने वाले कुफ्र इस्लाम के मार मार के गजवाए हुनैन में इन्हें हरावल दस्ते का कमांडर नामजद किया गया। हुनैन एक वादी का नाम है जो शहर ताइफ से शुमाल मशरक की जानिब तकरीबन 40 मील के फासले पर जबल औतास में वाक़ है। यहाँ पर एक मशहूर और मारूफ जंगजू कबीला हवाजन आबाद था, जिसकी बहुत सी शाखें हर तरफ फैली हुई थीं। ये कबीला तीरंदाजी में बड़ी महारत रखता था। फतह मक्का के बाद शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले की सरकोबी का फैसला किया। मदीना मुनव्वरा से आने वाले 10,000 मुजाहिदीन के हमराह 2,000 अफराद मक्के से भी शामिल हो गए। इस तरह लश्कर इस्लाम 12,000 अफराद पर मुश्तमिल था। इस मार्के में मुहाजरीन की क्यादत हजरत उमर फारूक रज़ील तालान के सुपुर्द की गई। कबीला औस के आलमबरदार हजरत उसैद बिन हजेर रज़ील तालान को बनाया गया। कबीला खजरज की सरबराही मुश्तरका तौर पर हजरत साद बिन उबादा रज़ील तालान के सुपुर्द हुई और खालिद बिन वलीद रज़ील तालान को कबीला बनो सुलैम का सालार मुकर्रर किया गया। शाह उमम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम की क्यादत करते हुए 10 शव्वाल 8 हिजरी बरोज मंगल बवक्त शाम मकाम हुनैन पर पहुंच गए। बनू सुलैम को अजीम जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद की क्यादत में मुकदमतुल जैश के तौर पर पहले रवाना किया गया। मुकाबले में दुश्मन की तादाद 4,000 थी। ये सूरत हाल देखकर मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए और अपनी फतह को यकीनी समझने लगे। ताईद एजदी और नुसरत इलाही के बजाय अफराद कुव्वत की बिना पर हुसूल फतह का ख्याल उनके नेहा खाना दिल में समा गया। अल्लाह सुबहानहु व ताला को ये अंदाज पसंद न आया, जिसकी वजह से लश्कर इस्लाम को पहले मरहले पर परेशानी का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद में इस मंजर को यूं बयान किया गया है, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رُحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين। तर्जुमा, और अल्लाह ने बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद की, और हुनैन के दिन जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था तो वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और जमीन बावजूद फराखी के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भागे और अल्लाह ने रसूल और मोमिनीन पर तस्कीन नाजिल की और फरिश्तों के लश्कर उतारे जिन्हें तुम नहीं देखते थे, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, और यही सजा है काफिरों की। सूरह तौबा। कबीला हवाजन और कबीला बनू सकीफ के तजुर्बाकार जंगजू घाते लगाए अपनी कमीन गाहों पर बैठे हुए थे। जो ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ील तालान हो हरावल दस्ते को लेकर आगे बढ़ते हुए दुश्मन की जद में आए, तो मध्य मुकाबिल ने मुजाहिदीन पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे उनके पांव उखड़ गए। दुश्मन ने मौका गनीमत जानते हुए एक जोरदार हमला किया, जिससे पूरे लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। ऊंट और घोड़े अपने सवारों समेत जिधर मुंह हुआ सर पर दौड़ निकले। चाहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सिर्फ चंद मुजाहिदीन मैदान में बाकी रह गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म व इस्तक़लाल का भरपूर मुजाहरा करते हुए बा आवाज़ बुलंद पुकारने लगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ और इसमें कोई शक नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। चश्मे बीना से देख लो, मैं मैदान में डटा हुआ हूँ, भागने वाला नहीं। हजरत अब्बास रज़ील तआला दर्द भरे अंदाज में मुजाहिदीन को पुकार पुकार कर कह रहे थे, ए मुहाजरीन अंसार, शाह उमम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में वापस चले आओ। कहाँ भागे जा रहे हो? अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहा है, इधर आओ, वापस पलटो। हजरत अब्बास रज़ील तआला की गरजदार आवाज सुनकर मुजाहिदीन वापस पलटे और वालेहाना अंदाज में लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा मस्ताना लगाते हुए رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ حاضر ہوئے۔ مجاہدین نے نئے جوش و ولولے کے ساتھ اپنی منتشر قوت کو مجتمع کر کے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کا نقشہ بدل گیا۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کاٹ دار تلوار کے ذریعے دشمن کو کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ جو بھی آگے آیا وہ ان کی تیغ برا کے وار سے بچ نہ سکا۔ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں دشمنوں پر یوں جھپٹ رہے تھے جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ آور ہو۔ اس مارکہ آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنے جسم پر گہرے زخم کھائے۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے چہیتے جرنیل حضرت خالد بن ولید کے پاس تشریف لائے، جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے یوں سمجھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت آج ان کی جھولی میں آ گری۔ فرحت و انبساط اور مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے، زہ نصیب، آج آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ آج میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، یہ میرے زخم ہی مقدر والے ہیں جن پر مقدس و نورانی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا، جس سے آپ بہت جلد شفایاب ہو گئے۔ غزوہ حنین کے بعد مارکہ طائف میں حضرت خالد بن ولید نے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرأت و شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت بہم پہنچایا۔ بلا شبہ یہ علامتیں ایک کامیاب جرنیل ہی میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اور روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے رگو پے میں کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی تھی۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جس طرف کا بھی رخ کیا، فتح و نصرت نے ان کی قدم بوسی کی۔ اسلام کا جھنڈا چہار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ قیصر و کسرا کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہونے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت جرنیل ایک اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں، وہاں ایک پرتاثیر اور باروب مبلغ کی حیثیت سے بھی میدان تبلیغ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل جہاد اور تبلیغ کا اہم ترین فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے تساہل، بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسلام لانے کے بعد تقریباً ہر غزوے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سفر رہے۔ آپ نے انہیں متعدد مواقع پر لشکر اسلام کے ہراول دستے کا سالار مقرر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی حضرت خالد بن ولید کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد حاصل رہا۔ اور جب آپ نے اس دنیا فانی سے رحلت کی تو آپ امت مسلمہ کے عظیم انسان، میدان جہاد کے دھنی اور لشکر اسلام کے کامیاب جرنیل حضرت خالد بن ولید پر انتہائی خوش تھے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا و مافیہا کی دولت اور حکومت کی طرف سے دیے جانے والے تمام اعزازات اس کے مقابلے میں ہیچ دکھائی دیتے ہیں۔ رضاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ عظیم جرنیل جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا، آج حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹا بے بسی کی تصویر بنا ہوا آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم، آج میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی۔ میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن ہائے افسوس، آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ افسوس، شہادت کا خلعت زرنی میرے نصیب میں نہ ہو سکا۔ یہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں اور ان کی پاکیزہ روح قفس انصری سے جنت الفردوس کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ آپ کی رحلت کی خبر جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو ملی، آپ بہت افسردہ ہوئے۔ اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ورثے میں ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، تو فرمانے لگے، خالد واقعی ایک عظیم انسان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے خلافت میں खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के उनके मनसब से माजूल कर दिया था। आपने ये इकदाम इसलिए किया था कि मुसलमान कहीं अपने अकीदे में फतह व नुसरत को हजरत खालिद बिन वलीद के साथ मुंसलिक ना कर दें। उन्होंने दरबार खिलाफत में माजूली का पैगाम मिलते ही खालिसतन सिपाहियाना अंदाज में इस्लाम की बुलंदी के लिए बरजा और रगबत आमादगी का इजहार करके तारीख में एक नाकाबले फरामोश बाब रकम कर दिया था। ये सच है कि इसने एक अजीम जर्नेल और एक वफादार सिपाही की तरह जिंदगी बसर की। इसने जिंदगी भर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार रहने की वजह से अपने बदन को अजियतों का महवर बनाए रखा। आज बहिश्ते बरी में इसका आराम का पहला दिन है। जब इनका जनाजा घर से उठाया गया तो वालदा ने गम में डूबे हुए और आंसू बहाते हुए कहा, मेरे राज दुलारे, बिलाशुबा तू हजारों में एक, तू शेर से बढ़कर बहादुर और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया और इस तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चों की हिफाजत किया करता है। मेरे लख्ते जिगर, अल्लाह की रहमत का साया सदा तुम पर रहे। मेरी दिली दुआ है कि आखरत में तुझे राहत, आराम और चैन नसीब हो। बेटा, जिंदगी भर तू मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर रहा। अल्लाह करे आखरत में तुझे खुशियां नसीब हो। बेटा, मैं तुझे रब्बे करीम के सुपुर्द करती हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब माँ के अपने अजीम बेटे के बारे में तासुरात सुने तो बरमला कहा, खालिद के बारे में इसकी माँ बिल्कुल सच कहती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के को जनाजे के बाद लहद में उतार दिया गया। सहाबाए किराम गम से निढाल खामोश खड़े थे। हर तरफ हू का आलम था। इस मुहीब खामोशी और तवील सुकूत को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के अशार नामी घोड़े की गम आलूद हिनहिनाहट ने तोड़ा। गोया घोड़ा अपने सवार की जुदाई में आहें भर रहा था। सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ये मंजर देखकर अंगुश्ते बदनदार रह गए कि घोड़ा अपने सवार की जुदाई में गम से निढाल आंसू बहा रहा था। दुनिया इस्लाम के अजीम जर्नेल हजरत खालिद बिन वलीद ने 21 हिजरी को हुम्स में वफात पाई और वहीं दफन है। बिलाशुबा उन्होंने काबिले रश्क जिंदगी बसर की और नहायत ही सुकून भरे अंदाज में अल्लाह सुबहानहु व ताला को प्यारे हो गए। अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहू वाफिही वाफू अन। मोहतरम भाई मोहम्मद ताहिर नक्काश एक मंझे हुए साहिब तर्ज अदीब हैं। उनके कलम से बहुत से अदबी मजामीन मंजर आम पर आकर दादे तहसीन वसूल कर चुके हैं और बहुत सी इल्मी और अदबी तारीखी और इस्लाही किताबें नहायत उम्दा और नफीस अंदाज में शाया करने का इन्हें एजाज हासिल है। जेर नज़र किताब अल्लाह की तलवार अस्करी तारीख के एक अजीम जर्नेल सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ील ताला अन्हु के सवाने हयात शाया करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये किताब चूंकि अरबी जबान में थी और इसके मौलिफ अबू जैद शिबली हैं जिसको उर्दू का कालिब में ढालने की शेख मोहम्मद अहमद पानीपत्ती ने सआदत हासिल की और नजरसानी के फराइज मोहतरम जनाब अबू याहया मोहम्मद जकरिया जाहिद ने नहायत खुश उसलूबी से सर अंजाम दिए। ये किताब इस काबिल है कि इसे हर लाइब्रेरी की जीनत बनाया जाए और अस्करी तंजीमें इसे तरबियती निसाब में शामिल करें। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही वसल्लम। अल्लाह करीम का आजिज बंदा अबू जिया महमूद अहमद गजनफर सब्जाजार लाहौर 17 जून 2003। हिस्सा अव्वल खालिद बिन वलीद रजिला तालान हो इस्लाम से कबल। नसब हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान हो का शजरा नसब मंदरजा जेल है। अबू सुलेमान खालिद रजिला तालान हो बिन वलीद बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम बिन यकजा बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील तला अन्हों से आपका नसब सातवीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। ये था शजरा नंबर एक। आपकी वालदा का नाम लबाबा तुस सुगरा था जो हारिस इब्ने हजन हलालिया की बेटी थी। इनका और आपके वालिद वलीद का सिलसिला नसब मुजिर पर जाकर मिल जाता है। ये था आपका शजरा नंबर दो। विलादत। तारीख की किसी किताब से हमें खालिद बिन वलीद रज़ील तालान की सही पैदाइश की तारीख का इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता इब्ने असाकिर और इब्ने बुरहानुद्दीन ने अपनी सीरत में लिखा है कि बचपन में एक दफा उमर बिन खत्ताब और खालिद बिन वलीद रज़ील तालान ने कुश्ती लड़ी, जिसमें खालिद ने उमर की पिंडली तोड़ डाली, जो काफी इलाज मुआलजे के बाद ठीक हुई। इसी वाक़े से दोनों का हम उम्र साबित होता है होना साबित है। इस्लाम के जहूर के वक्त उमर 27 साल के थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की भी इस वक्त यही उम्र होगी। खालिद की भी इस वक्त यही उम्र होगी। अगर ये बात मान ली जाए कि दोनों हम उम्र थे, तो उम्र बौसत नबी के वक्त मुत्तफिका तौर पर 27 बरस की थी और रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही 12 फरवरी 610 ईस्वी को नाजिल हुई थी। रहमतुल्लिल आलमीन जिल्द अव्वल। इस मद में से 27 बरस मिन्हा किए जाएं तो इस हिसाब से खालिद की पैदाइश 583 ईस्वी में साबित होती है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 12 साल बाद। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के असल वाकयात शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि इनके मंशा व मौलद, इनके कबीले और इनके वालदैन का मुख्तसर हाल बयान कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह हम इनके मुतालिक ऐसी राय कायम कर सकते हैं जो हकीकत से दूर नहीं होगी। वो जगह जहाँ कोई शख्स कयाम पजीर होता है, उस जगह की आबो हवा, वहाँ के मैदान और वादियाँ, इस शख्स के साथी और दोस्त और वो कबीला जिनमें वो अपनी जिंदगी गुजारता है, इसके अखलाक व आदात और खसाइल पर गहरा असर डालते हैं। इन असरात का ताल्लुक इंसान की इब्तदाई जिंदगी ही से नहीं, बल्कि कबल पैदाइश की जिंदगी से भी होता है। माहिरीन नफ्सियात का मकौला है, किसी शख्स में किसी खास खसलत का पाया जाना इस अमर की गम्माजी करता है कि उसके वालदेन उसकी पैदाइश से पहले किसी हादसे से दो चार हो चुके हैं। चुनाचा 17वीं सदी के मशहूर अंग्रेज मुदब्बिर थॉमस लोब के मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो इंतहाई बुजदिल था, और इसकी वजह ये थी कि उसकी वालदा को हस्पानवी बहरी बेड़े आर्मेड के इंग्लिस्तान पर चढ़ाई के दौरान में इंतहाई खौफ व हिरास के आलम से गुजरना पड़ा था। इसी खौफ और हिरास का असर उसके बेटे में भी सराइयत कर गया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का वतन। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते थे, जो कि मक्का का मशहूर और मारूफ कबीला था। शहर और कबीले ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो पर गहरा असर डाला था। इन असरात को समझने के लिए मक्के की तबई और इज्तमाई हालतों का मुताला जरूरी है। मक्का हिजाज के जनूबी इलाके की एक बंजर वादी के दरमियान वाक़े है। यहाँ की हवा गर्म है, अलबत्ता पानी हर किस्म की कदूरतों और गंदगी से पाक है। साहिल समंदर करीब है, इसलिए सहरा में होने के बावजूद सहराई आबो हवा का ज्यादा असर मक्के पर नहीं। ये इलाका ज़रात और सनत व हिरफत के काबिल नहीं है। रेतीली जमीन होने की वजह से खेती बाड़ी नहीं हो सकती और सनत व हिरफत के नाम पर खाम मवाद नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ के बाशिंदों को रोजी कमाने के लिए सफर पर निकलना पड़ता है। चुनाचा जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें अहले मक्का साल का बेशतर हिस्सा सफर में गुजारते थे और इनके कदम रात दिन गर्दिश में रहते थे। इसकी तरफ अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इशारा दिया है। لإيلافي قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। तर्जुमा। चूंकि अल्लाह ताला ने कुरैश के दिलों में जाड़े और गर्मी के सफरों की उल्फत पैदा कर दी है, इसलिए इन्हें चाहिए कि वो इस उल्फत पैदा कर देने की वजह से इस खाना काबा के मालिक की इबादत करें, जिसने इनको भूख में खाने को दिया और खौफ से इनको अमन में रखा। सूरह कुरैश। इन तबई हालात का असर यहाँ के बाशिंदों पर पड़ना जरूरी था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सेहत बहुत अच्छी थी। खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने की वजह से सितारा शनासी में उन्हें काफी दस्तरस थी। दिन रात सफर में रहने के बायस इनमें मेहनत और मुशक्कत उठाने की आदत राशिख हो चुकी थी। मुख्तलिफ कौमों से मेल जोल था, इसीलिए फरासत और दानाई में ये लोग दूसरे अरब कबाइल में मुमताज थे। मजहबी लिहाज से अरब में मक्के को बहुत अहमियत हासिल थी, क्योंकि इस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से बनाई हुई वो मुकद्दस इमारत खड़ी थी, जिसे काबाए मुकर्रमा और बैतुल्लाह के नामों से पुकारा जाता है, जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया का हर मुसलमान नमाज पढ़ता है और जिसकी जियारत करने के लिए हर साल लाखों आदमी जमा होते हैं। बैतुल्लाह के मक्के में वाक़े होने के अलावा अहले मक्का को एक खसूसियत ये भी हासिल थी कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे जलील कदर नबी की औलाद थे। काबा की तवल्लियत इन्हीं के हाथ में थी, इसी वजह से वो ऐसी खास मराहत के हामिल थे जो दूसरे अरब कबाइल को हासिल ना थी। चुनाचा इस्लाम से कबल हज के मौके पर कुरैश मक्का अरफात में जाकर नहीं ठहरते थे, हालांकि अरफात में ठहरना हज का रुकन आजम है। वो कहते थे कि हम ऐन हरम के रहने वाले हैं, हरम की हद के बाहर क्यों जाएं? इसी तरह वो बाहर से आने वालों को मजबूर करते थे कि वो अपने मामूली कपड़ों में हज ना करें, बल्कि खास कपड़े यानी एहराम पहन कर आएं, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नंगे होकर हज करें। इसी का असर था कि तमाम अरब कबाइल में अहले मक्का को निहायत दर्जा इज्जत और एहतराम हासिल थी, और वो समझते थे कि अरब का कोई फर्द, घराना और कबीला उनसे ज्यादा मुअज्ज़ज़ नहीं। अल्लाह ताला ने भी इस नेमत उज़्मा का जिक्र करके जो उसने अहले मक्का को अता फरमा रखी थी, मंदरजा बाला सूरत में शुक्र करने की तरफ इनकी तवज्जो दिलाई है। मक्का इन तजारती काफिलों के रास्ते में पड़ता था जो हिंदुस्तान और अपने मुल्क की चीजें लेकर यमन से शाम और मिस्र जाया करते थे। ये काफिले पानी का जखीरा करने और रास्ते के लिए सामान खुर्दोनोश इकट्ठा करने के लिए यहाँ जरूर कयाम किया करते थे। मक्के के करीब कई बाजार थे जिनकी खसूसियत ये थी कि वहाँ न सिर्फ तजारती सामान फरोख्त होता था, बल्कि शायरी और अदब के मुकाबले भी मुनक्किद होते थे। अरब कबाइल एक दूसरे पर अपनी फोकियत और बड़ाई का इजहार इन्हीं बाजारों में करते थे। तजारती काफिलों के आने जाने से मक्के में खूब चहल पहल और गहमा गहमी और रौनक रहती थी। मक्का महज तजारती काफिलों की गुजरगाह ही नहीं था, बल्कि यहाँ के बाशिंदे भी तजारत का काम वसी पैमाने पर करते थे, और बीसियों शहरों खुसूसन शाम और यमन की जानिब इनके तजारती काफिले बकसरत जाया करते थे। तजारत सफरों की कसरत और मुख्तलिफ अकवाम के साथ मेल जोल रखने का नतीजा अहले मक्का के हक में बहुत सूदमंद साबित हुआ। इनके यहाँ माल की फरावानी थी और वो निहायत खुशहाल थे। दूसरी कौमों के साथ मेलजोल के नतीजे में इनको मुख्तलिफ तहजीबों और अफकार के मुताले का मौका मिला, जिससे उनकी अकलें सकील यानी पॉलिश हुई और जहन काफी हद तक बुलंद हुए। मजहबी हैसियत के अलावा मक्के को तमाम अरब पर अदबी और इखलाकी हैसियत से भी इम्तियाज हासिल था। ये इम्तियाज उस वक्त से शुरू होता है जब कुरैश के जद्दे अमजद कुस्सा बिन कलाब अल मुतवफी 480 ईस्वी ने खजाआ पर गलबा हासिल करके मक्के की सियादत और बैतुल हराम का तमाम इंतजाम अपने हाथ में लिया। कुस्सा को जो इज्जत, कदर और मंजिलत हासिल हुई वो इसकी वफात पर खत्म नहीं हुई, बल्कि नस्लन बाद नस्ल इसकी औलाद में मुंतकिल होती चली गई। चुनाचा अहले मक्का तमाम अरब में इंतहाई अदब और एहतराम की निगाह से देखे जाने लगे। अहले मक्का के इस इम्तियाज और बर्तरी में बहुत बड़ा हिस्सा इन बाजारों का भी था जो मक्के के करीब वाक़े थे। ये बाजार, जिनको मेला कहना ज्यादा मुनासिब है, हर साल मुनक्किद होते थे। सारे अरब से शौरा, खतीब, मुफक्किर और हुकमा इन मेलों में शामिल होने के लिए आते थे। शायरों शायरी की महफिलें मुनक्किद होती। फसीहुल बयान खतीब अपने खुतबों से लोगों के दिल गरमाते। हर कबीला अपने शायरों, खतीबों, मुफक्किरों और हुक्मा के बल पर दूसरे कबीलों पर अपनी बड़ाई जताता और अपने बुलंद और आला मर्तबे का ढिंडोरा पीटता। इन मेलों में अहले मक्का को मरकजी हैसियत हासिल होती थी। जब शौरा फखरिया अशार सुनाते और कबाइल के सरदार अपनी बड़ाई और बर्तरी का इजहार करते, तो वो कुरैश को मुस्तस्ना करार दे देते थे। चुनाचा मशहूर शायर अख्तल कहता है, मैंने तमाम लोगों को खूब अच्छी तरह परख कर ये राय कायम कर ली है कि हम सिवाय कुरैश के बाकी तमाम लोगों से अफजल हैं। अहले मक्का में अपनी बड़ाई और बर्तरी के एहसास की वजह से शुजाअत, बहादुरी, हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत, हर मैदान में कामयाबी हासिल करने और दुश्मनों से पूरा पूरा इंतकाम लेने का जज्बा, अपनी तारीफ सुनने का शौक, हर कौम हर कभी काम में सबकत, वफा, अहद, पड़ोसियों और पनाह गुजीनों की हिफाजत के खसाइल कुदरती तौर पर पैदा हो गए थे। अपने कौमी किरदार के क्याम और इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए वो किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते थे। अहले मक्का में सियासी शऊर बहुत बढ़ा हुआ था। इनमें जो सियासी निज़ाम मुरव्ज था वो शुराई और जमहूरी हुकूमतों के निज़ाम से बहुत मिलता जुलता है। ओहदों और रुतबों की तकसीम में हर कबीला शरीक था और कोई कबीला अपने जायज़ हक से महरूम न था। बाहमी मुआमलात के में मशवरे मशवरा करने के लिए एक दारुल नदवा कायम था, जहाँ वक्तन फवक्तन सरदारान कबाइल जमा होकर हाजिरुल वक्त मसाइल पर बहस व तमहीज करते और बाहमी मशवरे से किसी कतई और यकीनी फैसले पर पहुँचते। दारुल नदवा की इसी शक्ल को बाद में मुतमद्दिन अकवाम ने अपनाया, जिसे आजकल पार्लियामेंट के नाम से मौसूम किया जाता है। सरदारों के फैसलों को हर्फ आखिर का दर्जा हासिल होता था और कौम को इन्हें लाजमन कबूल करना पड़ता था। दारुल नदवा का क्याम इसीलिए अमल में लाया गया था कि यहाँ बैठकर सरदारा ने कबाइल पहले मुत्तफिका तौर पर कोई फैसला कर लें, ताकि किसी खामी और गलती का इम्कान न रहे। इसके बाद वो इसे अपने कबीले को के जरिए नाफिज कराएं। इसी तरह अहले मक्का की कौमी जिंदगी में दारुल नदवा को जबरदस्त अहमियत हासिल हो गई। ये अमर काबिले जिक्र है कि यहाँ बैठकर जो फैसले किए जाते थे, किसी शख्स को इन पर चूँ चरा करने का कोई हक हासिल न था। हर कोई सच्चे दिल से इन्हें कबूल करता और बाद में किसी किस्म के हीले बहाने करके इन्हें कलादम करार देने की कोशिश न करता। इसी तरह कौम में यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफाक कायम रहता। इस शुराई तरीके का एक बड़ा फायदा ये भी था कि मक्के के हर कबीले के लोगों में अपने फराइज का एहसास और अपने सरदार का एहतराम था। इन पर शूरा की अहमियत अच्छी तरह वाजह थी और इसके लिए वो ऐसे ही नुमाइंदे यानी रईस को मुंतखब करते थे, जो इनके मामला को अच्छी तरह मजलिस के सामने पेश कर सके। मामला के इस इज्तमाही निज़ाम का अहले मक्का पर बहुत गहरा असर पड़ा। अरब के दूसरे कबाइल के मुकाबले में इनका अखलाक नुमाया तौर पर बेहतर था। अपने और दूसरे लोगों के अखलाक को फराइज और हुकूक को फराइज का इन्हें कमा हका एहसास था। कुरैश के जद्दे अकबर कुस्ता से कबल और इस्लाम के जहूर के वक्त अहले मक्का की हालतों का अगर मवाजना किया जाए तो दोनों दोनों हालतों में हमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। वो एक परागंदा और जाहिल कौम से, जिसे अपने ऊँटों के अलावा और किसी चीज की खबर न थी, एक ऐसी मुतमद्दिन कौम में तब्दील हो गए थे जिसने शाइस्तगी और तहजीब में काफी हद तक तरक्की हासिल कर ली थी। अहले मक्का के किरदार में तब्दीली की रोशन मिसाल हल्फुल फजूल का वाकया है, जब उन्होंने मिलकर ये अहद किया था कि वो हर मजलूम की मदद करेंगे। इसी हल्फुल फजूल के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अब्दुल्ला बिन जदान के घर में मैंने एक ऐसा अहद किया था जो मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज्यादा पसंद है, और अगर अब इस्लाम के जमाने में भी मुझसे इसका वास्ता देकर मदद मांगी जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस वाकये की तफसील इब्ने हशाम ने अपनी सीरत में इन अल्फाज में बयान की है। कुरैश के बाज़ कबाइल ने बाहम एक अहद करना चाहा, चुनाचा वो अब्दुल्ला बिन जदान बिन काब बिन साद बिन तैयम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई के घर में जमा हुए और सबने बिलइत्तफाक कस्में खाई कि मक्के में वो जिस मजलूम को देखेंगे, ख्वाह वो मक्के का बाशिंदा हो या मुसाफिर, उसके साथ होकर जुल्म से जालिम से उसका बदला लेंगे। इस हलफ का नाम उन्होंने हल्फुल फुजूल रखा। मंदरजा ज़ेल कबाइल इस मौके पर मौजूद थे। बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, असद बिन अब्दुलौजा, जहरा बिन कलाब और तैयम बिन मर्रा। इसके साथ साथ कुरैश में ऐसे अफराद का पैदा हो जाना जिन्होंने अपने आबाई दीन को तर्क करके बुत परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की परस्तिश इख्तियार कर ली, इस रोशन ज़मीरे का पता देता है जो कुरैश में रोनुमा हो रही थी। इब्ने हशाम अपनी सीरत में लिखते हैं, एक दफा कुरैश अपने एक त्यौहार के मौके पर एक बहुत बड़े बुत के करीब जमा हुए, जिसकी वो बहुत ताजीम करते थे, उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे, उसके नाम पर कुर्बानियां करते थे और उसके गिर्द तवाफ करते थे। इस मौके पर चार अशखास ने खुफिया तौर पर इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, जो मंदरजा जेल थे। वरका बिन नौफिल, उबैदुल्ला बिन जहश, उस्मान बिन हुरैस और जैद बिन उमरू बिन नुफैल। उन्होंने आपस में तय किया, जो कि हमारी कौम ने इंतहाई गुमराही इख्तियार कर ली है और दीन इब्राहिमी से उनको किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहा। जिन बुतों की वो पूजा करते हैं वो महज पत्थर हैं, जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचाते हैं और ना नफा देते हैं, इसलिए हमें दीन इब्राहिमी की तलाश करनी चाहिए। इनमें से वरका बिन नौफिल ने बहुत कुछ गौर व फिक्र के बाद ईसाइत इख्तियार कर ली, और बाइबल और इंजील का मुताला करने के बाद वो ईसाइत के बहुत बड़े पैरोकार बन गए। इब्ने हशाम, जिल्द अव्वल। जहनियतों और अफकार में ये तब्दीली क्यों कर रूनुमा हुई, और वो जो कभी जंगल के भेड़िए थे मुतमद्दिन इंसानों में किस तरह तब्दील हो गए? ये दरअसल इस अम्र की अलामत थी कि अब अल्लाह ताला की तरफ से एक नए दीन का जहूर होने वाला है, और इस पैगंबर की विलादत का वक्त आन पहुंचा है जिसके सुपुर्द अल्लाह के दीन को तमाम मजाहिब पर गालिब करने का काम लगाया जाने वाला है। कुरैश की जाहिरी हालत अगरचे ऐसी न थी कि तारीख में ज्यादा देर तक उनका नाम जिंदा रह सकता, और वो तमाम अरब को अपने गिर्द इकट्ठा करके उन्हें अपना मुती और फरमा बरदार बनाकर एक लंबे अरसे तक आलम पर हुक्मरानी करते, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद दुनिया की सरदारी का ताज चूंकि इन्हीं के सर पर रखा जाने वाला था, इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही इनकी मुखवी इस्तेदादों और सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया, जो इन अजीम फतूहात और कारहाए नुमाया में बेहद मददगार साबित हुई, जिनका कुछ जिक्र आइंदा सफहात में आएगा इंशाल्लाह। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनू मखज़ूम से ताल्लुक रखते थे, जो कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था। जीरक, दाना और बाकमाल अफराद की इस कबीले में कमी न थी। मुग़ैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमरू, जो सखावत में अपनी मिसाल आप थे, इसी कबीले के फर्द थे। अबू वहब बिन उमरू भी, जिन्होंने सबसे पहले लोगों में यह ख्याल पैदा किया कि बैतुल्लाह की तामीर में सिर्फ वही रकम सर्फ की जाए जो हलाल तरीकों से हासिल की गई हो, इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब कुरैश काबा की तामीर नए सिरे से शुरू करने लगे तो अबू वहब ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा था, ए मेरी कौम, तुम इस इमारत की तामीर शुरू करने लगे हो जो अल्लाह का घर है, जिसमें शबो रोज अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसलिए इस बात का सख्ती से ख्याल रखो कि इसकी तामीर में कोई ऐसी रकम ना लगाई जाए जिसके हराम होने के मुतालिक तुम्हें शुबा हो। ना इसमें फाहिशा औरत का रुपया खर्च होना चाहिए, ना सूद का रुपया लगना चाहिए, और ना ऐसा रुपया लगना चाहिए जो लोगों पर जुल्म व सितम करके हासिल किया गया हो। मुअल्लिफ रूफ रूजुल रोजुल अन्फ लिखते हैं कि अबू वहब बिन उमरू की इस तकरीर से ये बात साबित होती है कि कुरैश जुल्म और फवाहिशात को दिल से हराम ही समझते थे, गो जाहिर में उन्हें ऐसा करने में कोई बात ना था। अबू वहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मामू थे और तमाम मक्के में निहायत इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। बनू मखज़ूम को कुरैश में जो रुतबा हासिल था, इसका सबूत इस वाकये से मिलता है कि जब काबे की तामीर का सवाल दरपेश हुआ तो इस ख्याल से कि तमाम कबाइल को इसकी तामीर का शर्फ हासिल हो, इमारत को कई हिस्सों में तकसीम करके हर कबीले के सुपुर्द एक एक हिस्सा कर दिया गया। इस मौके पर काबे की इमारत का चौथाई हिस्सा यानी हजर अस्वद से लेकर रुकन यमानी तक बनू मखज़ूम के हिस्से में आया, जिससे मालूम होता है कि बनू मखज़ूम किस कदर बुलंद मरतबे के मालिक थे। बनू मखज़ूम की बुजुर्गी और कदर व मंजिलत का इजहार इस अमल से भी होता है कि कुरैश की सियादत के मामले में इनका बनू हाशिम से अक्सर झगड़ा रहता था। जैसा कि पहले बयान हो चुका है, बनू मखज़ूम कुरैश का मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीला था। किसी कबीले को इससे हमसरी के दावे की जरूरत न थी, लेकिन बनू मखज़ूम किसी भी मौके पर अपनी बड़ाई और शर्फ व मंजिलत का इजहार करने से चूकते न थे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से नबूवत का दावा किया तो उन्होंने ये कहकर आपकी मुखालफत की कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता है बनाना चाहता तो हम में से बनाता। चुनाचा अबू जहल बनु हाशिम को मुखातिब करके कहा करता था, जिस वक्त सखावत, शुजात, बुजर्गी और इज्जत और शर्फ का मुकाबला हुआ, घोड़े मैदान में दौड़ने लगे और हमने मुकाबला जीत लिया, तो उस वक्त तुमने कहना शुरू कर दिया कि हम में नबी पैदा हो गया है। जिस वक्त कुरैश ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मगलूबुल गल्ब होकर बाहम एक मुहायदा तहरीर किया कि कोई शख्स आपसे और बनु हाशिम से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखेगा और इन्हें खाने पीने की कोई चीज मुहैया ना करेगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के साथ शाब अबी तालिब में महसूर होने पर मजबूर हो गए। कुरैश ने तमाम रास्ते बंद रखे थे और किसी जानिब से भी आपको खाने पीने की कोई चीज पहुंच नहीं सकती थी। जब महसूरीन भूख और प्यास की वजह से मरने के करीब हो गए तो सबसे पहले जिसके दिल में मुसलमानों के मुतालिक जज्बाए तरहम पैदा हुआ और जिसने सरी जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करके इस जालिमाना मुहिदे को खत्म करने के लिए जोर दिया, वो बनू मखजूम ही का एक फर्द हीर बिन अबी उमैया बिन मुगारा था। जब बाज मुसलमान कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा चले गए तो कुफार ने इनको वापस बुलाने के लिए निजाशी शाह हबशा के पास दो आदमियों पर मुश्तमिल एक वफद भेजा, जिसमें एक तो उमरू बिनुल आस थे और दूसरा बनू मखजूम का कोई फर्द था। ऐसी मौजज़ सिफारत में जो एक बादशाह के पास भेजी जा रही थी, बनू मखजूम के एक फर्द के शामिल होने से इसकी कदर मंजिलत का पता चलता है जो कुरैश के दिल में इस कबीले की थी। बनू मखजूम और सरदारान ने बनू हाशिम के दरमियान अजदवाज का सिलसिला भी जारी था। चुनाचा आतका बिनते अब्दुल मुत्तलिब अबू उमैया बिन मुगैरा से ब्याही हुई थी। इसी अबू उमैया के लड़के जुहैर बिन अबू उमैया ने सबसे पहले कुरैश के जालिमाना मुआहदे को फस्क करने का सवाल उठाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी फातिमा बिनते उमरू बिन मखजूम ही से ताल्लुक रखती थी। फातिमा बिनते उमरू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, आपके चचाओं अबू तालिब और जुबैर और सिवाय सफिया के बाकी तमाम फुपियों की वालदा थी। अगर इन सब बातों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तब भी बनू मखजूम की मंजिलत शर्फ और फख्र के लिए यह अमर काफी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी कबीले से अजदवाजी ताल्लुक कायम किया। चुनाचा आपकी दो अजवाज मुतहरात सैयदे उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रजीला ताला अन्हा बनू मखजूम से ताल्लुक रखती थी। जिस तरह बनू मखजूम कुरैश में इंतहाई बुलंद मर्तबे के मालिक थे, इसी तरह वो दौलत और सरवत में भी किसी से कम न थे। वाकदी ने कुरैश के इस अजीम उशान काफले का हाल ये बयान करते हुए, जो जंगे बदर से कबल इस मकाम के लिए तैयार किया जाता था, कि इससे जो मुनाफा हासिल होगा इससे मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियों में खर्च किया जाएगा, लिखा है कि इस काफले में बनू मखजूम के 200 ऊंट थे और इसमें इनका हिस्सा 4-5 हजार मिसकाल सोना था। जहां बनू मखजूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी करने में पेश पेश थे, वहां इस कबीले में मुखलिसीन की भी कमी न थी। इस कबीले के कई लोग साबकूनुल अव्वलून में शुमार होते हैं और कई ने अल्लाह की राह में हिजरत भी की। चुनाचा हबशा की तरफ जिन मुसलमानों ने हिजरत की, इनमें बनू मखजूम के 8 अफराद थे, जिनमें हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल असद और सैयदना अरकम बिन अबी अरकम भी शामिल थे। हजरत अबू सलमा इब्तदाई मुसलमानों में से थे और हबशा और हिजरत और मदीने की हिजरतों के मौके पर मुहाजरीन में पेश पेश आप ही थे। हजरत अरकम की बुलंदी मरतबे के लिए ये ही बयान कर देना काफी है कि मुसलमानों की पहली मस्जिद आप ही की जाय सुकूनत थी, जहां वो कुफारे मक्का से छुप कर अल्लाह वाहिद की इबादत किया करते थे और जहां जमा होकर वो इस्लाम की तरक्की की तरह तदाबीर सोचा करते थे। खालिद रजीला तालान्हो के चचाजाद भाइयों और बहनों के हालात। अबू जहल। सरदाराने कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद दुश्मनों में से और मशहूर सहाबी हजरत अकरमा रजीला तालान्हो का बाप था। सलमा कदीमी मुसलमान हैं, हबशा की तरफ हिजरत की, जंगे मरजु सफर में शहादत पाई। खालिद मौलिफत कुलूबहिम के जुमरे में शामिल हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हवाजन की गनीमतों में से हिस्सा दिया था। हारिस मुखलिस मुसलमान थे, इनके बारे में एक शायर कहता है, जाहिलियत और इस्लाम दोनों जमानों में इखलाक और सखावत के लिहाज से हारिस बेहतरीन शख्स हैं। अलास सरदाराने कुरैश में सिठा जंगे बदर में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे कत्ल किया। जुहैर मुआसरे शाब अबी तालिब को तोड़ने के लिए सबसे पहले इन्हीं ने आवाज उठाई थी। अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन जोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुहाजिर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनआ का अमीर मुकर्रर करके भेजा था। मुर्तदीन की जंगों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें अस्वद अंसी से लड़ने के लिए झंडा मरहमत फरमाया था। आयाश इब्तदाई मुसलमानों में से थे और दारे अरकम में मुसलमानों के जमा होने से पहले मुसलमान हुए थे, हबशा की दूसरी हिजरत में शरीक हुए थे। अब अब्दुल्ला सहाबी थे, जंगे ताइफ में शहीद हुए। अबू उमैया सरदाराने कुरैश में से था और जंगे बदर के दिन कुफ्र की हालत में कत्ल हुआ। हाशिम इब्तदाई मुसलमानों में से थे, हबशा की दूसरी हिजरत में शरीक थे। हंतमा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ील तालानहु की वालदा थी। अलवलीद जंगे यमामा में शहादत पाई। अबू कैस सरदाराने कुरैश में से था, जंगे बदर में हजरत हमजा रज़ील तालानहु ने उसे कत्ल किया था। पहले इस्लाम ले आया था, फिर मुर्दिद हो गया था। उस्मान ये इब्ने हजरमी के काफले में शरीक था और मुसलमानों के हाथों कैद हो गया था। नौफिल जंगे खंदक के मौके पर खंदक में गिर पड़ा था, मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बारिश की। हजरत अली रज़ील तआलान्हु ने खंदक में कूद कर इसका काम तमाम कर दिया था। हजरत खालिद रज़ील तआलान्हु के बुजुर्ग इस कबीले को कुरैश में जो शर्फ और रुतबा हासिल था, इसके मुख्तसर से जिक्र के बाद ये भी मुनासिब मालूम होता है कि हम हजरत खालिद रज़ील तआलान्हु के आमाम यानी चचाओं का भी मुख्तसर सा हाल बयान कर दें, जिससे मालूम होता है कि इन्हें अपनी कौम में किस दर्जा बुजुर्गी सियादत और बुलंद मर्तबा हासिल था। खालिद रज़ील तआलान्हु के चचा हजरत खालिद रज़ील तआलान्हु के चचा कुरैश में हर कौमी काम के मौके पर सबसे आगे होते थे। शराफत सखावत और अमारत में वो मुमताज हैसियत रखते थे। खाने काबा की तामीर के मौके पर जब हजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखने का सवाल पैदा हुआ तो कुरैश में जबरदस्त इख्तिलाफ बर्पा हो गया। हर कबीला चाहता था कि यह सआदत उसी के हिस्से में आए। इस झगड़े ने यहाँ तक तूल खींचा, करीब था कि तलवारें खिंच जाती और खाना जंगी बर्पा हो जाती। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ील तआलान्हु के चचा अबू उमैया बिन मुगैरा ही थे जिन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि इस झगड़े का तस्फिया उस शख्स से कराया जाए जो कल सबसे पहले खाने काबा में दाखिल हो। इस तजवीज़ पर सब लोगों का इत्तफाक हो गया और कुरैश एक जबरदस्त खाना जंगी से बच गए। कुरैश की खुशकिस्मती थी कि अगले रोज सबसे पहले जो शख्स खाने काबा में दाखिल हुआ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब लोगों ने आपको देखा तो कहने लगे, ये शख्स अमीन है, इसलिए हम इसके फैसले पर राजी हैं। अबू उमैया कुरैश में जादुर रिकाब यानी मुसाफिर का तोशा के लकब से मशहूर थे, क्योंकि जो शख्स उनके सफर में साथ होता था उसे अपना ज्यादा राह लेने की जरूरत ना होती थी। इसके खाने पीने के तमाम अखराजात अबू उमैया बर्दाश्त करते थे। अबू उमैया जहूर इस्लाम से कबल ही वफात पा गए। अबू तालिब ने उनका मरसिया कहा, जिसका एक शेर ये है, अफसोस जादुर रिकाब की हिफाजत करने वाला कोई नहीं, इसे शहर सरों से हैं में कब्रों ने अपने नीचे छुपा लिया। अबू अहीहा ने इनका मरसिया लिखते हुए कहा, अफसोस वो शख्स फौत हो गया जो बुजुर्ग और सखी था। कुरैश का बच्चा बच्चा उसकी तारीफ में रद्दुल लिसान था। वो हमारे हमारे यतीमों की पनाहगाह था। वो खुश्क साली के मौसम में बारान रहमत था। हजरत खालिद रज़ील तआलान्हु के दूसरे चचा भी सखावत और मेहमान नवाजी में अपना सानी नहीं रखते थे। फाका बिन मुगैरा ने एक बैतुल ज़ियाफ़त बना रखा था जहां जाकर हर शख्स बिला इजाजत खाना खा सकता था। आपके एक और चचा अबू हुजैफा बिन मुगैरा इन चार बड़े बड़े रऊसा में शरीक थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने के लिए इस चादर के कोने पकड़े थे जिसमें हजरे अस्वद रखा हुआ था। बाकी तीन रऊसा मंदरजा जेल थे। नंबर एक अतबा बिन रबिया बिन अब्दुशम्स, नंबर दो अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद बिन अब्दुल औजा और नंबर तीन कैस बिन आदी असहमी। एक चचा हशाम बिन मुगैरा भी कुरैश के सरदारों में से थे। हर्ब फुज्जार के मौके पर मखज़ूम की क्यादत इन्हीं के सुपुर्द थी। वो बड़े जरी और बेहतरीन शहसवार थे, शक्ल बड़ी बारोब थी। इनकी वफात से कुरैश को सख्त रंज पहुंचा था और कई खुतबे इनकी शान में पढ़े गए थे। मुकद्दसी लिखता है, हशाम की वफात के बाद मक्के के करीब 3 साल तक कोई मेला न लगा। कई साल तक ये तरीका राइज रहा कि अगर कुरैश किसी वाक़े का जिक्र करते तो ये कहते कि वाक़या हशाम की मौत के इतने अरसे बाद वक़ूअ पज़ीर हुआ। हशाम की वफात पर एक शायर ने अपने मरसिये में कहा, वादिये मक्का बेनूर हो गई है क्योंकि हशाम इस जमीन से उठ गया है। इससे मालूम होता है कि हजरत खालिद रज़ील तआलान्हु के चचा कौम में किस कदर बुलंद मर्तबा के मालिक थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई। मौरखीन में आपके भाइयों की तादाद के बारे में इख्तलाफ है। बाज इनकी तादाद 10 बताते हैं, बाज 13। बाज कहते हैं कि आपके 7 भाई हैं। सूरह अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 3, व बनी ना शुहुदा से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आपके कई भाई थे जो सब के सब मरफाउल हाल थे और ऐशो आराम से जिंदगी बसर करते थे। 7 भाइयों का होना ज्यादा करीन कयास है, क्योंकि इस्लाम से कबल और बाद के वाकयात और गजवात की छानबीन करने से 7 से ज्यादा का हाल मालूम नहीं होता। 7 भाइयों के नाम ये हैं: नंबर 1 आस, नंबर 2 अबू कैस, नंबर 3 अब्द शम्स, नंबर 4 अम्मारा, नंबर 5 हशाम, नंबर 6 वलीद, नंबर 7 खालिद रज़ियल्लाहु अन्हो। बहने 2 थी, नंबर 1 फातिमा और नंबर 2 फाख्ता। इनमें से आस इस्लाम से कबल ही बचपन में फौत हो गया था और अबू कैस इस्लाम ले आया था लेकिन बाद अज़ां मुर्तिद हो गया, और जंगे बदर में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हो और बाज रिवायत के बमौजिब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो के हाथों मारा गया। इसी के बारे में कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 97 नाजिल हुई थी: इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइकती ज़ालिमी अनफुसिहिम। तर्जुमा: बाज वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते कब्ज करते हैं अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। सूरह निसा। अब्द शम्स सैयदिना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई का नाम ही न था बल्कि उनके वालिद की कुनियत भी थी। अम्मारा को कुरैश ने उमरू बिन अल आस के साथ मुसलमानों को हबशा से वापस लाने के लिए भेजा था। इसी अम्मारा को कुरैश ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को आपके बदले पेश किया था और कहा था, ए अबू तालिब, ये लड़का कुरैश में सबसे खूबरू और साहिब फहम व तमीज़ है, तुम इसे अपना बेटा बना लो और इसके बदले अपने भतीजे मोहम्मद को हमें दे दो। कुरैश का ये कहना दरअसल ये एतराफ़ करना था कि अम्मारा में वो खूबियाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से वो तमाम कौम में मुनफरिद हैसियत रखता है, इसीलिए उन्होंने इसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एवज़ अबू तालिब के सामने पेश किया, और इसी की इन्हीं खूबियों को देखते हुए उन्होंने इसे निजाशी के पास भेजने के लिए भी मुंतखब किया। खालिद के अलावा वलीद और हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हो को भी इस्लाम कबूल करने और इस पर साबित कदम रहने की सआदत नसीब हुई। हिशाम इन लोगों में से थे जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने के बाद बतौर तालिबे कल्ब कुछ ना कुछ मरहमत फरमाया करते थे। वलीद पर उनके भाई और दूसरे कुरैश इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत जुल्म तोड़ा करते थे। आखिरकार वो मौका पाकर मदीना भाग गए। रास्ते में लगातार चलने की वजह से उनकी एक उंगली जख्मी हो गई। उन्होंने उंगली को मुखातिब करते हुए कहा, तू क्या है, महज एक उंगली ही तो है जो जख्मी हो गई है, अभी तूने अल्लाह के रास्ते में तकलीफ ही क्या बर्दाश्त की है। वलीद अपने दोनों भाइयों खालिद और हिशाम से बहुत पहले इस्लाम लाए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनके लिए दुआ मांगा करते थे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने में वलीद का भी हाथ है। आपकी बहन फातिमा ने फतह मक्का के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। इनकी शादी हारिस बिन हिशाम मखज़ूमी से हुई थी। दूसरी बहन फाख्ता सफवान बिन उमैया की बीवी थी और अपने शोहर से कई माह कबल इस्लाम लाई थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा। आपकी वालदा लुबाबत उस्सुग़रा का नसब अपने शोहर वलीद से कैस ऐलान बिन मुज़िर पर जाकर मिल जाता है। इनके इस्लाम लाने के बारे में मौरखीन में इख्तलाफ है। मौलिफ किताबुल असाबा लिखते हैं कि वो इस्लाम ले आई थी। इनके इस दावे की बुनियाद इस अमर पर है कि वो उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने तक जिंदा रहीं। लेकिन इब्ने हजर इनके इस्लाम लाने को तस्लीम नहीं करते। लुबाबत उस्सुग़रा की 8 बहनें थीं। नंबर 1 मैमूना बिनत हारिस ज़ौजाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये शर्फ हासिल है कि उनके खाला उम्महातुल मोमिनीन में से थीं। नंबर 2 उम्मुल फजल लुबाबतुल कुबरा बिनत हारिस ज़ौजाए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। इनके मुतालिक कहा जाता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद वो सबसे पहली औरत हैं जो इस्लाम लाई। इनकी औलाद आगे चलकर अजीम शान अब्बासी सल्तनत की मालिक बनी। नंबर 3 असमा बिन तहारिस जौजाए अबी बिन खलफ अल आजमी। इनके बतन से अबान पैदा हुए। 4 अज़ा बिन तहारिस ज़ौजा ज़ियाद बिन अब्दुल्ला बिन मालिक अल हिलाली इनके मुतालिक इब्ने अब्दुल बर कहते हैं, किसी शख्स ने इनका शुमार सहाबियात में नहीं किया। मेरा ख्याल भी यही है कि इन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक नहीं मिली थी। 5 हज़ीला बिन तहारिस इनका निकाह किसी आराबी के साथ हुआ था। ये अक्सर अपनी बहन सैयदा मैमूना को घी पनीर और मक्खन भेजा करती थी। 6 अस्मा बिन तयामी सबसे पहले ये सैयदना जाफर बिन अबी तालिब के निकाह में आई। इनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने इनसे शादी की। आखिर में हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी ताला अन्हु की ज़ौजियत में आईं। पार्ट नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है।